नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराधिसा नायके के साथ पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया संघर्ष के दूरगामी प्रभावों से निपटने के लिए 7 सशक्त समूहों के गठन की घोषणा की। सरकार ने देश में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन मजबूत करने के लिए नया आदेश जारी किया। गुजरात विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। विधेयक में विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के लिए एक समान कानूनी ढांचा प्रदान करने के प्रावधान। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने कहा, पाकिस्तानी सेना ने 1971 में बांग्लादेश में निहत्थे लोगों के खिलाफ इतिहास का सबसे जघन्य नरसंहार किया और छत्तीसगढ़ में आज से पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल शुरू होंगे। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर पश्चिम एशिया की स्थिति के बारे में चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत तनाव कम करने और जल्द से जल्द शांति बहाल करने का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि खुला, सुरक्षित और सुलभ होर्मुज जलडमरू मध्य पूरी दुनिया के लिए आवश्यक है। श्री मोदी ने कल श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से भी टेलीफोन पर बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने पश्चिम एशिया की बदलती स्थिति पर चर्चा की, जिसमें वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित वाली बाधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राज्यसभा में दिए वक्तव्य में पश्चिम एशिया संघर्ष के दूरगामी प्रभावों से निपटने के लिए 7 सशक्त समूहों के गठन की घोषणा की। उन्होंने राज्यों से केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस संकट से बचने के लिए टीम इंडिया के रूप में कार्य करने की अपील की। युद्ध के गंभीर दुष्प्रभावों का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 7 सशक्त समूह युद्ध के परिणामों से निपटेंगे और ईंधन, उर्वरक, गैस, आपूर्ति श्रृंखला और मुद्रास्फीति पर नीतियां बनाएंगे।
भारत सरकार ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप भी बनाया है। 7 नए एम्पावर्ड ग्रुप्स का भी गठन किया गया है। ये ग्रुप सप्लाई चेन, पेट्रोल डीजल, फर्टिलाइजर, गैस, महंगाई ऐसे विषयों पर त्वरित और दूरगामी रणनीति के तहत कार्रवाई करने का काम करेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति बहाली के लिए संवाद और कूटनीति को एकमात्र समाधान बताते हुए भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने कहा कि भारत ईरान, इसराइल और अमेरिका सहित सभी पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में है, जिससे तनाव को कम किया जा सके।
युद्ध की शुरुआत के बाद से मैंने पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। हमने डी एस्केलेशन और हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी उनसे बात की है।
सरकार ने देश में ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन बिछाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने हेतु एक नया आदेश जारी किया है।
ये निर्देश होर्मुज जलडमरू मध्य में अवरोध के कारण ईंधन आपूर्ति में संभावित बाधाओं को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि घरेलू उपभोक्ताओं तक पाइपलाइन के जरिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बढ़ाने से उन क्षेत्रों में एलपीजी की उपलब्धता बढ़ेगी जहां पाइपलाइन सुविधा नहीं है। ये आदेश पेट्रोलियम अधिनियम 1934 के अंतर्गत परिभाषित और केंद्र सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त सभी सार्वजनिक संस्थाओं, हाउसिंग सोसाइटी और अधिकृत संस्थाओं पर लागू होगा। अधिकृत संस्थाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पाइपलाइन बिछाने का अधिकार देता है, जिससे मार्ग के अधिकार में देरी और स्थानीय अधिकारियों द्वारा लगाए गए अनुचित शुल्क जैसी समस्याओं का समाधान होगा। समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
सरकार ने आश्वासन दिया है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है और एलपीजी का घरेलू उत्पादन बढ़ा दिया गया है तथा सभी संयंत्र अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर आयोजित अंतर मंत्रालयी बैठक को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में ईंधन का पर्याप्त भंडार है।
सभी लोगों से निवेदन करूंगी कि अफवाहों पर विश्वास न करें। सफिशिएंट स्टॉक्स अवेलेबल हैं, पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त आपूर्ति हो रही है, एलपीजी सिलेंडर भी सभी घरेलू उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है, पीएनजी की सप्लाई डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए 100% है विदाउट एनी कट।
पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने दोहराया कि किसी भी बंदरगाह पर भीड़भाड़ नहीं है और सरकार समुद्री व्यापार को निर्बाध रूप से जारी रखने का पूरा प्रयास कर रही है।
गल्फ क्षेत्र में मौजूद सारे भारतीय जहाज और सारे भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। पिछले 24 घंटे में कोई भी समुद्री घटना दर्ज नहीं हुई है। कल देर शाम दो भारतीय फ्लैग वाले एलपीजी कैरियर्स पाइन गैस और जग वसंत, इन दोनों जहाजों ने सेफली स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार किया और ये भारत की तरफ अग्रसर हैं। पाइन गैस में 45,000 मेट्रिक टन एलपीजी है और वो अराइवल 27 मार्च को संभावित है। वहीं दूसरी एलपीजी कैरियर वेसल जग वसंत है जिसमें करीब 47,600 मेट्रिक टन एलपीजी है और उसकी अनुमानित आगमन तिथि 26 मार्च है।
विदेश मंत्रालय में खाड़ी देशों के अपर सचिव असीम आर महाजन ने कहा कि सरकार खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।
इंश्योरिंग द सेफ्टी सिक्योरिटी,
इस क्षेत्र में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों की सहायता और समर्थन के लिए मंत्रालय का समर्पित नियंत्रण कक्ष कार्यरत है। परिचालन और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के आधार पर एयरलाइंस भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सीमित गैर निर्धारित उड़ानें संचालित करना जारी रखे हुए है।
एंड सेफ्टी कंसिडरेशंस,
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आज लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन वित्त विधेयक 2026 पर चर्चा का जवाब देंगी। इस विधेयक का उद्देश्य वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करना है। आज ही दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2025 पर भी चर्चा होगी। राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 पेश करेंगे। गुजरात विधानसभा में कल 7 घंटे से अधिक चली बहस के बाद बहुमत से समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक को पारित कर दिया गया। विधेयक में धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप को नियंत्रित करने के लिए एक समान कानूनी ढांचा प्रस्तावित किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सदन में ये विधेयक पेश किया। विधेयक पारित होने के साथ ही गुजरात उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। पुदुचेरी में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ईवीएम और वीवीपैट के औचक चयन की पहले चरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में रेड्डियार पलयम स्थित ईवीएम गोदाम को सील कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई आज दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत करीब 5 लाख भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के बैंक खातों में लगभग 500 करोड़ रुपए अंतरित करेंगे। मध्य प्रदेश में कक्षा 5 और 8 के लगभग 23 लाख विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम आज सुबह 11:30 बजे जारी होंगे। परिणाम राज्य शिक्षा केंद्र पोर्टल पर जारी किए जाएंगे। विद्यार्थी अपनी आईडी या परीक्षा रोल नंबर से अपने अंक देख सकते हैं। ऑनलाइन उपलब्ध क्यूआर कोड के माध्यम से भी परिणाम देखने की सुविधा दी गई है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने आज नरसंहार दिवस पर शोक व्यक्त किया है। ये दिवस 25 मार्च 1971 के पीड़ितों की याद में मनाया जाता है। अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए श्री रहमान ने कहा कि स्वतंत्रता प्रेमी बांग्लादेश के इतिहास में 25 मार्च 1971 सबसे शर्मनाक और क्रूर दिनों में से एक है। इस दिन पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम पर बांग्लादेशियों का नरसंहार किया था। छत्तीसगढ़ में आज पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेलों की शुरुआत होगी। इसका उद्घाटन समारोह आज रायपुर में होगा। केंद्रीय खेल और युवा कार्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया इन खेलों का शुभारंभ करेंगे। खेलों में 30,000 से अधिक जनजातीय खिलाड़ी और करीब 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
इस आयोजन का उद्देश्य देश के आदिवासी क्षेत्रों के युवाओं को एक ऐसा राष्ट्रीय स्तर का मंच प्रदान करना है जहां उनके खेल कौशल को सही पहचान और अवसर मिल सकें। रायपुर में फुटबॉल, हॉकी, तीरंदाजी, स्विमिंग, वेटलिफ्टिंग और कबड्डी की प्रतियोगिताएं होंगी, जबकि बस्तर में एथलेटिक्स और सरगुजा में कुश्ती तथा मलखम्ब की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में देश के करीब 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 3,000 से अधिक जनजातीय खिलाड़ी और अधिकारी भाग ले रहे हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
हमारी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी की अगली कड़ी में हम कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह से बातचीत करेंगे। ये बातचीत आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर प्रसारित होगी। मौसम विभाग ने आज उत्तर पूर्वी राज्यों आंध्र प्रदेश, मराठवाड़ा और तेलंगाना में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने और बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। महाराष्ट्र के भीतरी हिस्सों, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने का अनुमान है। केरलम, माहे, कोंकण और गोवा में भी उमस तथा गर्मी की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत आज के अखबारों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है, राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से की बात, दोनों ने कहा होर्मुज खुला रहना जरूरी। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और शांति बहाली पर जोर दिया। पश्चिम एशिया संकट पर प्रधानमंत्री का राज्यसभा में वक्तव्य देशबंधु ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत के लिए भी स्थिति चिंताजनक, ईरान जंग जारी रही तो गंभीर नतीजे होंगे। दैनिक भास्कर ने दिल्ली के ग्रीन बजट को प्रमुखता दी है। पर्यावरण, महिलाओं और शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर। बजट का 21% हिस्सा प्रदूषण से निपटने एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए। होली दिवाली पर हर परिवार को एक एक फ्री एलपीजी सिलेंडर और नौवीं की छात्राओं को मुफ्त साइकिल, टॉपर छात्रों को लैपटॉप की घोषणा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, ट्रिपल इंजन से विकास को ग्रीन सिग्नल, रेखा ने लंबी रेखा खींची, लिखता है हिंदुस्तान। बिजली पानी मुफ्त ही रहेंगे, 1,000 महिला ऑटो चालकों और 100 किन्नरों को मुफ्त ई ऑटो के परमिट मिलेंगे। नवभारत टाइम्स ने बताया है, ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल कराने पर ही मिलेगा रिफंड। 30 मिनट पहले तक बदल सकेंगे बोर्डिंग स्टेशन, आधे घंटे पहले क्लास भी अपग्रेड होगा। पंजाब केसरी ने एससी एसटी एक्ट पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रमुखता दी है। धर्म परिवर्तन करने पर नहीं मिलेगा एससी का दर्जा। लोक सत्य के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, महिला अफसर सेना में स्थायी कमीशन की हकदार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है, गौ रक्षा एक आर्थिक मॉडल भी हो सकता है। गांव के भूमिहीन परिवारों की सीमति बनाकर उन्हें चारागाहों की भूमि पर चारा उगाने के काम में लगाया जाना चाहिए। अलविदा शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, आखिर 13 साल की खामोश पीड़ा से मुक्त हुए हरीश राणा।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराधा नायके के साथ पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया संघर्ष के दूरगामी प्रभावों से निपटने के लिए 7 सशक्त समूहों के गठन की भी घोषणा की। सरकार ने देश में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइनों को मजबूत करने के लिए नया आदेश जारी किया। गुजरात विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया और छत्तीसगढ़ में आज से पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल शुरू होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।